ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे बीच हैं और हम सभी जोरदार तालियों के द्वारा उनका हार्दिक स्वागत करेंगे, क्योंकि भाई जी अभी आपको बताएंगे कि इन सबको करने से भी हमारे स्वास्थ्य को क्या लाभ मिलता है। तो आदरणीय भाई जी, ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं, आपने हृदय की गति को संतुलन दिया है, जीवन शैली परिवर्तन कर आपने अद्भुत प्रयोग किए हैं और 100% आरडी भी खोल दी है, ब्लॉक आरडी, ये तो आप लोगों को मालूम है। आध्यात्म ही आपकी चिकित्सा पद्धति का आधार है, आपको अनेकों सम्मान से भी नवाजा गया है। दादी जी की भी चिकित्सा में आपका अहरनीय सहयोग रहा है, तो आप हृदय के विशेषज्ञ हैं। तो अभी भाई जी के द्वारा ही आप सुनेंगे ज्ञान योग की गहराई क्या है। आदरणीय डॉक्टर सतीश भाई जी।
ओम शांति। आप सभी पिछले 5 दिन से बाबा के घर में भट्टी कर रहे हैं, योग भट्टी कर रहे हैं, और आपने बहुत सुंदर सुंदर अनुभव किए हैं। दादियों के द्वारा, बड़े भाई बहनों के द्वारा क्लासेस मिली हैं, किंतु आज हम थोड़ा सा गहराई में चले जाते हैं, ज्ञान योग की गहराई में चले जाते हैं। कहते हैं ना, महान बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, महीनता में जाना पड़ता है। महान का अर्थ क्या है, हम सभी बाबा के राजयोगी बच्चे हैं कि प्रजायोगी बच्चे हैं? राजयोगी बच्चे हैं, तो राजयोगी माना राजा बनने वाले बच्चे है ना। तो राजा कितने बनेंगे त्रेता के अंत तक? राजा बनेंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे, कितने आएंगे? सिर्फ 16,108, बाकी 9,00,000 प्रजा बनेगी ना, और त्रेता के अंत तक 2 करोड़ बन जाएंगे। किंतु उसमें से हमें 2 करोड़ में आना है कि 16,108 में आना है, किसमें आना है? महान बनने का अर्थ 16,108 में आना या 108 की माला में आना? तो आप में से कितने हैं जो 16,108 की माला में आना चाहते हैं, हाथ उठाओ। जो 16,108 की माला में आना चाहते हैं, ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा, पूरा हाथ ऊंचा, शर्माओ नहीं, शर्माओ, उठाओ उठाओ, राइट वाला, राइट, लेफ्ट नहीं, राइट वाला उठाओ, राइट वाला। बाकी लोग नहीं आना चाहते, बाकी लोग नहीं आना चाहते, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, 108, जो 108 की माला में आना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, देखो मैं कौन कौन आना चाहते। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब सभी महान बनना चाहते हैं, राइट? तो हमें ज्ञान की महीनता माना, ज्ञान की गहराई में जाना पड़ेगा। नहीं, जैसे हम दुनिया में भी देखते हैं, ये जो 5 तत्व ना प्रकृति के, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों को हम सभी यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं, धरती को भी यूज करते हैं, सब्जियां, अनाज जो हम यूज रोज यूज करते हैं, वो धरती है ना, धरती से उत्पन्न होता है ना, पानी को भी रोज यूज करते हैं, वायु को भी रोज सांस लेते हैं, तो पानी पीते भी हैं, वायु को यूज भी करते हैं, आग, अग्नि को भी यूज करते हैं, है ना, और स्पेस, आकाश को भी यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं, और ऐसे यूज करते रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति आकाश तत्व की महीनता में चला गया, उसने स्पेस रॉकेट बना दिया, उसने एरोप्लेन बना दिए, जो वायु की महीनता में चला गया, उसने बहुत सारी गैसेस बना दी, लाइफ सेविंग गैसेस बना दी, बेहोश करने वाली गैसेस बना दी, है ना, जो अग्नि के महीनता में चला गया उसने बहुत सारी चीजें बना दी, जो पृथ्वी के महीनता में चला गया उसने बहुत सारी चीजें बना दी, एयर कंडीशनर बन गए, आग की उसमें गया तो उसने बिजली बना दी। जो पांच तत्वों की महीनता में गया तो उसे साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। ऐसे ही जो आत्मा की महीनता में चला गया, परमात्मा की महीनता में चला गया, मेरा परमात्मा से क्या संबंध है, उसकी गहराई में उतर गया। ये संसार रूपी ड्रामा क्या है, ये नाटक क्या है, इसका आदि मध्य अंत क्या है, अर्थात सौदर्शन चक्र के महीनता में चला गया वो क्या बन जाएगा, वो महान बन जाएगा, वो विजयी रतन बन जाएगा। सारी दुनिया उनको याद करेगी, नहीं याद करेगी? आज भी 108 की माला सिमरते हैं ना सभी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, सबके सब 108 की माला सिमरते हैं, धर्म जाति को छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने इनकी चार बातों की महीनता में गए। वो किसकी महीनता में गए? एक तो ज्ञान की महीनता में गए, परमात्मा की महीनता में गए, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां है, उससे हमारा क्या संबंध है, संबंध की महीनता में चले गए, गहराई में चले गए, और संसार रूपी ड्रामा की गहराई में चले गए। समझ लिया उसको, ज्ञान माना समझ। चलिए अब हम ज्ञान की गहराई में चलते हैं, चले तैयार है चलने के लिए? डर तो नहीं लगेगा? गहराई में जाने से कई बार डर लगता है ना, ज्ञान की गहराई में चलते हैं। चलो, ज्ञान माना समझ। समझ आने के बाद हम वो काम नहीं करते हैं। सपोज हमें समझ आ गई कि ये जो सांप है ये काट लेता है और काटने से मर जाते हैं, ये समझ में आ गई, ये स्मृति में रिकॉर्ड हो गया कि भी ये सांप है, या ये जहर है, इसको पीने से मर जाते हैं या खराब तबीयत हो जाती है, ये स्मृति में आ गया। अब वो स्मृति में आने के बाद उसके अनुसार हमारे विचार चलते हैं, तो सांप को देखते ही हमारे विचार चलना शुरू हो जाएगा, संकल्प, बोल और कर्म फिर स्मृति के आधार पर होते हैं। स्मृति हमारी आगे रिकॉर्ड हो गई, माँ बाप ने बचपन से भर दिया सांप काट लेता है, इससे मर जाते हैं, बहुत खतरनाक है, ये स्मृति में रिकॉर्ड हो गया। अब वो समझ में, पहले समझ आती है फिर स्मृति में रिकॉर्ड होता है, उसके बाद हमारे विचार चलते हैं उसके हिसाब से, जब देखते हैं उसको तो संकल्प चले, फिर उसके हिसाब से बोले थे सांप है, सांप हट जाओ सब दूर हट जाओ, फिर कर्म भी उसी हिसाब से करते हैं, हम भाग जाते हैं या उसको मारते हैं या उसको अपने बच्चों को बचाते हैं, कैसे भी करते हैं ना, तो ये फिर हमारे संकल्प, बोल और कर्म फिर उसके आधार पर चलते हैं, उस समझ के आधार पर चलते हैं। एक बात मैं और बता दूं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, जिसे हम चित्त कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हमारा 100% निश्चय होता है ना, 100% निश्चय होता है, तो ही हमारा बुद्धि उस पर निर्णय देती है, और जब बुद्धि निर्णय दे देती है तो हमारी पूरा तन मन धन संकल्प बोल कर्म से हम उस कार्य को पूरा करने में जुट जाते हैं। जब तक बुद्धि निर्णय ना दे कि हाँ ये करना है, तब तक हम उसमें 100% नहीं लगते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं आपको। आज रात को आपकी फ्लाइट है, रात को 2 बजे आप ऑस्ट्रेलिया जाने वाले, ठीक है, किंतु आपके हाथ में टिकट नहीं है, आपको कुछ ने कहा कि आपकी आज फ्लाइट वहां से टिकट मिलेगी, आपको लोटस हाउस अहमदाबाद से, और आपको इतने बजे की आपकी फ्लाइट है, और आपको 11 बजे चेक इन करना है, 3 घंटे पहले आपको चेक इन, इंटरनेशनल फ्लाइट है, चेक इन करना है, ठीक है, पर आपके पास टिकट नहीं है, आपके हाथ कोई कंफर्म भी बात नहीं, किसी ने कंफर्म आपको नहीं कहा है, तो मन में शक है, थोड़ा सा शक है, पता नहीं शायद आज नहीं कल हो, तो आप तब तक लगेंगे नहीं कि सही पहले पता कर लो, पता कर लेंगे हाँ इतने बजे ये फ्लाइट है और मेरी टिकट उसमें कंफर्म है, ऐसे ऐसे है, और मुझे 11 बजे पहुंचना है, अभी 5:30 बज गए है ना, 3 घंटे लगते हैं अहमदाबाद जाने में, है ना, तो आपको 11 बजे तक अहमदाबाद पहुंच के चेक इन कर देना है ना? तो आप क्या तन मन धन से संकल्प बोल कर्म हर चीज से सारा काम छोड़कर उसमें लग जाएंगे, मतलब आपको 100% निश्चय हो गया, 100% ये चित्त में बैठ गया कि मुझे ये करना है, मुझे जाना है, फिर आपके संबंधी भी आपकी मदद करेंगे। किसको कहेंगे ना, भाई 11 बजे फ्लाइट है, मुझे अभी निकलना, अभी 6 बजे निकलना ही है मुझे कैसे भी करके, तभी मैं वहां पहुंच सकूंगा और मैं तभी वहां जाके चेक इन कर सकूंगी। तो आप अपने पूरा जोर लगा देंगे, मतलब उस 6 बजे को यहां से निकलने के लिए और वहां एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए, नहीं करेंगे या नहीं करेंगे? 3 घंटा भी, 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, बाई चांस हमारी कार खराब हो जाए, कुछ और रास्ते में हो जाए, तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि 11 बजे अगर आप 11:10 पहुंचे तो आपको एंट्री नहीं देंगे, आपका बोर्डिंग टिकट नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे ही हमारे मन में 0.001% भी अगर कोई संशय होता है ना बुद्धि में, मन में, सबकॉन्शियस माइंड में भी, कॉन्शियस माइंड की बात छोड़ दो, सबकॉन्शियस माइंड में भी 0.01% भी कुछ संशय है, कुछ शक है, तो आपकी बुद्धि उस पर निर्णय नहीं देती है और आप उसमें तन मन धन से नहीं लगते हो, और तन मन धन से नहीं लगते हो, संकल्प वाणी कर्म से नहीं लगते हो, तो बुद्धि फिर वो काम आपका सक्सेस नहीं होता है, सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए ये जो समझ बाबा ने हमको दी है, ज्ञान माना समझ, ये जो समझ बाबा ने स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने हमें समझ दी है, वो समझ में हमारा 100% निश्चय होना चाहिए, बाबा में 100% निश्चय होना चाहिए, ये मेरा बाप है, सचमुच मेरा बाप यही है, जो बाबा ने मुझे समझ दी तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, इसमें 100% निश्चय होना चाहिए, समझ आनी चाहिए, पक्की 100% होनी चाहिए, जरा भी शक ना हो, 1% भी, 0.001% भी संशय है ना, तो हमारी बुद्धि इस पर निर्णय नहीं देगी और हम इस पुरुषार्थ में लगेंगे नहीं, हमारा पुरुषार्थ साधारण पुरुषार्थ ही रहेगा, और उस साधारण पुरुषार्थ के रहते हम कभी राजा नहीं बन पाएंगे, हम महान नहीं बन पाएंगे, बस अमृत वेला किया, मुरली सुनने चले गए, आधा सोए अमृत वेला, आधा सोए आधा योग किया, मुरली में भी गए थोड़ा लेट गए, फिर वहां पे जाके थोड़ा सो गए, बीच में सुन लिया, मुरली सुनने के बाद याद नहीं, फिर अपने काम में लग गए, फिर शाम को सोने के समय अच्छा बाबा गुड नाइट करके सो गए, चलो हो गया काम पूरा, है ना, यही पुरुषार्थ चलता रहेगा। कल भी क्रोध किया था, आज भी क्रोध किया, कल भी बच्चे पे मुंह आया था, आज भी मुंह आया, आज भी किसी ने कुछ कहा तो ईगो आ गई, अहंकार आ गया, कल भी आया था, आज भी आलस आया, कल भी आया, कल भी ईर्ष्या आई थी, आज भी ईर्ष्या आई, कहानी चल रही है ना, ये साधारण पुरुषार्थ चलता रहेगा। आज भी खाने पीने पे इच्छा गई है ना, इंद्रियों के दास बने, आज भी देखा, बाबा ने कहा था बच्चे सीरियल नहीं देखना, बाबा ने कहा था फिल्म नहीं देखना, सिनेमा नहीं देखना, आज कल भी देखा था, आज भी देखा, टीवी खोल के बैठ गए, 1-2 घंटा वेस्ट कर दिया, आज भी कर दिया, कल भी किया था, मुरली में कहा था बाबा ने आज नहीं करना, बच्चे 1 सेकंड बहुत कीमती है, वैल्यूबल है, संगम का 1 सेकंड बहुत वैल्यूबल है, कल भी सुना था आज भी सुना है, कोई असर नहीं हुआ, हुआ क्या सर? बस यूं ही गाड़ी चल रही है, साधारण पुरुषार्थ, इंद्रियों के दास आज भी हैं, आज अगर इंद्रियों के दास हैं तो सत्य में जाकर क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे ना, आज हमारी कर्मेंद्रिय हमारे वश में नहीं है, आज हमारा मन हमारे वश में नहीं है, आज हमारी बुद्धि हमारे वश में नहीं है, आज हमारी आस्ती हमारे वश में नहीं है, तो कल हम क्या करने वाले, क्या बनने वाले? हमारा भाग्य स्पष्ट है, दास दासी बनेंगे। मन के वश में तो प्रजा बनेंगे। अगर आज मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरे वश में है, मन जो कहता है मैं उसके नहीं, ये मन श्रीमत पे है, ये मन में विचार आ रहा है श्रीमत पे है, ये बुद्धि निर्णय दे रही है श्रीमत पे है, ये जो मैं कर रहा हूं इस पे, जो मेरी आदत पुरानी आदत के वश तो नहीं है, मनमत या परमत के वश तो नहीं कर रहा हूं, ये मैं देखने को दिल कर रहा है, खाने को दिल कर रहा है, क्या शक्ति के वश तो नहीं कर रहा हूं, आदत पड़ी उसके वश तो नहीं कर रहा हूं, ये मुख से जो बोल निकल रहे हैं आदत तो नहीं पड़ी हुई ऐसा बोलने की, तो जब हम इस तरह से जब अपने आप को देखते हैं तो हमें अब अपने आप ही डिसीजन हो जाता है कि मैं आज के पुरुषार्थ में सर मैं क्या बनूंगा। तो अभी हम महीनता में जाएंगे, कैसे महीनता में जाएं हम समझेंगे, ठीक है। फिर मैं दोबारा बताऊं, ज्ञान माना समझ, अर्थात समझ के जो बाबा ने हमको समझ दी है अब उसके अनुसार हमें चलना है। अभी तक हम ना समझते, अपने को देह समझते थे, अपने को डॉक्टर समझते थे, इंजीनियर समझते थे, बिजनेसमैन समझते थे, माँ समझते थे, बाप समझते थे, पति समझते थे, पत्नी समझते थे, नहीं? बहुत पैसे वाला या बहुत गरीब समझते थे, अनपढ़ समझते थे या बहुत पढ़ा लिखा समझते थे। ये समझ है कि ना समझ है? ये ना समझ ही है ना? ये तो देह का भान है, ये हमारा आउटर सेल्फ है, ये हमारा बाहर का ज्ञान है। कोई माँ बाप पैदा होते हैं क्या कभी जन्म से, या पति पत्नी पैदा होते हैं, ये डॉक्टर इंजीनियर बिजनेसमैन पैदा होते हैं? ये तो हमारा रोल है, लेबल है हमारा, ये हमें लेबल मिला हुआ है, नाम भी हमारा लेबल है ना, सतीश गुप्ता भी तो लेबल है ना, डॉक्टर भी तो लेबल है ना। तो ये जो लेबल है, लेबल ही मैं, ये लेबल जो है लेबल मैं नहीं हूं। जो बाबा ने कहा नहीं बेचा, तुम देह नहीं तुम आत्मा हो। अगर ज्ञान की गहराई में जाएं तो ज्ञान का सार तो वैसे बहुत है, बहुत माना कितना है, बहुत है। बाबा इसके लिए मुरलियों में कई बार कहते हैं, बच्चे इतना है ये ज्ञान कि सारे सागर को शाही बना दो, सारी धरती को कागज बना दो, सारे जंगलों के लकड़ियों के कलम बना लो, तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं होता। किंतु सार रूप में ज्ञान जो है वह सिर्फ ए बी सी डी है। क्या है? ए बी सी डी, राइट। इससे पहले भी मैं ज्ञान के इसमें जाऊं, इससे पहले मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा सबको, हम सबको शांति प्यार खुशी सबको चाहिए, नहीं चाहिए जीवन में, चाहे वो बीके है चाहे नॉन बीके है, चाहिए शांति प्यार और खुशी सबको चाहिए ना, सबको शांति प्यार खुशी चाहिए। वो कैसे आएगी? शांति प्यार खुशी तब आएगी जब हमारे जीवन में पवित्रता होगी, ठीक है ना। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और पवित्रता कब आएगी? जब ज्ञान होगा। ज्ञान कब आएगा? ज्ञान माना समझ कब आएगी? जब अपने को आत्मा समझेंगे। अपने को आत्मा कब समझ पाएंगे? जब परमात्मा की याद होगी। कई बार कहते हैं बस हम लोग, मैं 30-30 साल वाले भाई बहने मिलते हैं, मैंने कहा आप योग कैसे करते हैं? कहते हैं हम योग करने बैठते हैं ना तो हम बोलते हैं अपने आप को, मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, मेरा बाबा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर है। अब 30 साल से ज्ञान में हम चल रहे हैं, 40 साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, तो 40 साल के बाद भी कोई अगर कोई कॉलेज में पढ़ता है, 20 साल से पढ़ रहा है, तो क्या वो शुरुआत जब पढ़ाई की करता है तो ऐसे बोलता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ऐसे बोलता है क्या जो पहली क्लास में पढ़ा होता है, कि सीधी किताब पढ़ना शुरू करता है? आज हम ज्ञान में 30-40 साल से चलने के बाद भी हम क्या करते हैं? बैठते क्या महसूस करते हैं? फील करना शुरू करते हैं, रिवाइज करते हैं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर संबंध उसके साथ है, डी फॉर ड्रामा, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, नहीं करते ऐसे। जो ऐसा नहीं करते वो हाथ उठाओ, जो ऐसा नहीं करते, अपने को पहले आत्मा समझने अनुभव नहीं करते, फिर बाद में सीधे योग में बैठ जाते, सभी ऐसे करते हैं। अर्थात अभी तक हमको एबीसीडी का पाठ ही पक्का नहीं हुआ है। तो अपने को आत्मा तब समझेंगे जब आत्मा, तभी समझ सकते हैं जब परमात्मा की याद होगी। एक भिखारी को कहो तो अपने को सेठ समझेगा वो सेठ, हालांकि वो बच्चा जो भिखारी है वो सेठ का बच्चा है, माँ बाप से बचपन में बिछुड़ गया था, अब भीख मांग के जेब काट के अपना पेट भरता है, पर असल में सेठ का बच्चा है। 2 साल की उम्र में माँ बाप से बिछुड़ा था और 10-12 साल का है, उसको पता नहीं मेरे माँ बाप कौन है। कभी किसी को माँ बाप बोलता है, कभी किसी को माई बाप बोलता है, कभी किसी को माई बाप बोलता है, कभी किसी को, कोई उसको हेल्प नहीं करता है, रोटी नहीं खिलाता है, कपड़े नहीं देता पहनने के लिए। अभी जो है उसको कोई, उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं है, और कितने उसको कोई इसको आता है पहचान के कहता है तू अपने को सेठ का, तू तो सेठ का बच्चा है, तू अपने को सेठ का बच्चा समझ, तो समझ सकता है अपने को सेठ का बच्चा। जब तक वो सेठ उसको अडॉप्ट ना कर ले, पहचान ना ले, या सेठ या सेठानी उसको पहचान ना ले, उसको उसके कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहना के उसको कहे तू मेरी गोदी में बैठा, आ मेरी गोदी में बैठ, तू मेरा लाल है, तू मेरा चांद है, उसकी माँ बोले तू मेरा चांद है, तू मेरा राजा बच्चा है, जब तक उसके नौकर उसको ना कहे तुम छोटे सेठ जी हो, तब तक अपने को सेठ का बच्चा समझ नहीं सकता। ऐसे ही हम अपने को आत्मा समझ नहीं सकते हैं जब तक परमात्मा की याद हमें ना हो, जब तक परमात्मा मुझे ना कहे कि तू मेरा बच्चा है। ये स्मृति ना आ जाए मुझे कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, ये अंदर स्मृति रिकॉर्ड हो जाए कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, और बार बार बाबा के वो कान में बोल गूंजे कि बाबा बच्चे तू मेरा बच्चा, मीठा बच्चा है तू, मेरा सिक्की लदा 5000 साल पहले वाला बच्चा है, मुझसे बिछड़ा हुआ बच्चा है, मैं तुझे बहुत सालों से ढूंढ रहा हूं, अब बहुत सालों के बाद मिला है। तब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं? तो आत्मा समझने के लिए परमात्मा की, कहते हैं अपने को आत्मा समझ के बैठ जाओ, अरे आत्मा समझेंगे कैसे अपने आप को, अपने को यही समझते हैं, अपने को जो रोल मिला लेबल मिला उसी को वही समझ के जीवन में रहते हैं, सभी रहते हैं। कि तो परमात्मा का बच्चा समझने के बाद अपने को आत्मा समझ सकते हैं, वो शक्ति जब परमात्मा की मुझ में आ गई तो मैं आत्मा समझ सकता हूं। अब परमात्मा की याद कैसे आएगी, बाप की याद कैसे आएगी? बाप की याद तब आएगी जब मैं सवेरे सवेरे उठ के अमृत वेला, सारा संगम भी अमृत वेला है वैसे तो, कि तो उस अमृत वेले में भी ये सुबह 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 का टाइम 4 से 5 बजे का टाइम, ये स्पेशल अमृत वेला है। जब तक मैं अमृत वेले उठ के बहुत प्यार से बाबा को याद ना करूं, वो समय सतो प्रधान समय है, वो समय जब उठते हैं ना रात को सो के उठते हैं तो हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी 3-4 ही होती है, शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, ब्रह्मा बाबा की 1 है, और मैं उठा तो मेरी 3-4 है, तो मुझे सिर्फ विचार करना पड़ेगा बाबा को गुड मॉर्निंग करनी, मैं आत्मा हूं समझ के बाबा को गुड मॉर्निंग करनी पड़ेगी और एकदम कनेक्शन लग जाएगा, स्मृति जागृत हो जाएगी। दिन में मेरे 15 विचार चल रहे, 15 मेरी फ्रीक्वेंसी है, 20 फ्रीक्वेंसी है, 20 से 1 पे आना 2 पे आना बहुत मुश्किल काम है, बुद्धि कई बातों में लगी हुई है, विचार तेज चल रहे हैं, सुबह सुबह कोई काम नहीं, प्रकृति भी सतो प्रधान है सुबह सुबह, वो समय एकदम हमारा कनेक्शन लग जाए। तो परमात्मा की याद भी उसको रहेगी जो सुबह सुबह 4 बजे उठेगा, मुंह हाथ धो के ब्रश करके बहुत फ्रेश होके बहुत प्यार और खुशी से बाबा को याद करेगा, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करेगा, एक एक संबंध की अनुभूति करेगा, विचार सागर मंथन करेगा, उसको अनुभूति होगी, उसको उसका फिर उसको परमात्मा की याद दिखेगी। क्योंकि अमृत वेले के समय ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। परमात्मा की याद उसको आएगी जो रोज मुरली सुनेगा, क्योंकि मुरली में परमात्मा के महावाक्य हैं। जो सोचे कि मेरे को परमात्मा की याद रहती है बस, कैसे जो मुरली मिस करता है उसको परमात्मा की याद रह ही नहीं सकती है, क्योंकि उसमें परमात्मा की श्रीमत है, बाबा की श्रीमत है। ये मुरली ही बाबा की श्रीमत है, मुरली ही 100% पॉजिटिव टीम है। टीम समझते हैं, मन में चार बातें होती हैं, मन के चार एस्पेक्ट होते हैं। इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। इंग्लिश में कहते हैं थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज, टीम। थॉट्स माना टीम, टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस माना भावनाएं, ए फॉर एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स माना वृत्ति, और एम माना मेमोरीज माना स्मृति, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प। तो मुरली ही 100% पॉजिटिव टीम है, उसमें 100% पॉजिटिव स्मृतियां हैं। बच्चे तुम तो कौन थे, तुम देवी देवता थे, तुम तो तुम्हारे सोने हीरे जवाहरात के महल थे, तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी थे, तुम निरंतर देही अभिमानी स्थिति में रहते थे, वहां कोई रोग का नाम निशान और नाम निशान भी नहीं था। पॉजिटिव एटीट्यूड है, सबके प्रति आत्मिक वृत्ति रखो, सबको आत्मा देखो, सबके प्रति शुभ भावना रखो। कोई कैसा भी हो, निंदा ग्लानी में समान, निंदा और स्तुति में सेम रहो। कोई ग्लानी करे चाहे बड़ाई करे, एक जैसे रहो। सबके प्रति शुभ भावना रखो, संकल्प श्रेष्ठ, शुद्ध, शक्तिशाली और कल्याणकारी रखो सबके प्रति। यही तो बाबा कहता है मुरली में, नहीं तो अमृत वेला करने से परमात्मा की याद आएगी, मुरली सुनने से परमात्मा की याद आएगी। फिर सारा दिन में कम से कम 21 बार मुरली को रिवाइज करो, जो हर आधे घंटे में, एक घंटे में, पौने घंटे में, पानी पीने के समय, खाना खाने के समय, जैसे खाली बैठा, कार में बैठा, बस में बैठा। मुरली क्या है, मुरली क्या चीज है, भगवान का लव लेटर है ना। ये लव लेटर नहीं है क्या, ये चार पेज का लव लेटर मेरे लिए है, किसके लिए है? लव लेटर कहां रखते हैं, कहां रखते हैं, जिन्होंने प्यार किया होगा उनको पता होगा कैसे, कहां रखते हैं लव लेटर, दिल के पास रखते हैं ना। और दिल के पास रखते हैं तो क्या करते हैं, दिखाकर नहीं पढ़ते किसी को, चुपचाप पढ़ते हैं, छुपा करके, यूं देखा, जेब से निकाला, थोड़ा ही निकाला, मुस्कुराया, फिर अंदर कर लिया। नहीं ऐसे करते, नहीं करते। फिर जैसे ही मौका मिला, देखा कोई नहीं है आसपास, फिर निकाला, देखा, फिर अंदर कर लिया। फिर वो जब तक वो दोबारा दोबारा देखने का चांस मिले तब तक उसी में खोए रहते हैं। तो ऐसे जैसे ही मौका मिले, आधे घंटे में, 15 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में, 35 मिनट में, मौके की तलाश रहनी चाहिए कि मेरे प्रेमी ने मुझे क्या लिखा है, मेरे साजन ने मेरे लिए आज क्या लिखा है, आज मुझे क्या वरदान दिया, आज मुझे क्या स्लोगन दिया, आज मुझे क्या कहा करने के लिए कि शाम तक मैं क्या बन जाऊं, है ना। तो ऐसे दिन में कम से कम 21 बार का हमें भाग्य लेना, 21 जन्म का, तो कम से कम 21 बार हमको मुरली क्या करना चाहिए, पूरी मुरली नहीं, एक दो लाइन, एक दो लाइन, एक दो लाइन, कभी मीठे बच्चे, कभी स्लोगन, कभी वरदान, कभी धारणा का एक सार, एक लाइन पढ़ ली, कभी एक फ्रूट देख ली, सोचते रहे, फिर उसी काम करते रहे। बाबा कहते ना, हथ कार्डे दिल यार्डे, हाथों से काम करते हो, दिल यार के पास लगा रहे, साजन की याद बनी रहे, निरंतर बनी रहे। नहीं ऐसे तो परमात्मा की याद किसको रहेगी, जो अमृत वेला करेगा पक्का, है ना, जो मुरली सुनेगा, और कम से कम दिन भर 21 बार मुरली रिवाइज करेगा। कितनी बार, एक दो बार नहीं, कितनी बार, 21 बार। वो 21 जन्म का राज्य भाग्य पाएगा। राजा बनना है क्या, प्रजा बनना है, जो प्रजा बनना चाहते हैं हाथ उठाओ। एक दो तो बन जाना ना, ऐसा तो चाहिए ना, प्रजा भी चाहिए, नहीं चाहिए किसी को, नहीं बनना क्या बात, ताली बजाओ फिर से सभी नायक जोर से। तो राजा बनने वाले सभी बैठे हैं ना, तो 21 बार हमें राजा बनना है, 21 जन्म के रॉयल फैमिली में रहना है, तो हमको 21 बार कम से कम, हम लोग तो ये अटेंशन रखते हैं, हालांकि इतना बाबा के हिसाब से दुनिया के साथ बहुत बिजी रहते हैं पर बहुत इजी रहते हैं। जैसे ही मौका मिला, एक पेशेंट देखा, जेब से मुरली निकाली, एक पॉइंट रिवाइज कर लिया, फिर उसी 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 याद में बात दूसरा पेशेंट, वो पेशेंट देख लिया, फिर मौका मिला, फिर निकाल लिया, जहां मौका मिला 20 बार, 21 बार, 50 बार, 75 बार, जितनी बार हो सके, जरूरी 21 बार तो मिनिमम है, 21 बार तो मिनिमम है, 84 बार करो तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं 84 जन्म सुख पाएंगे ना। तो सचमुच में इतना अभ्यास हो, और फिर सोने के पहले जो अपना पोता मेल बाबा को देगा, बाबा सुबह से लेकर आज शाम तक हमने ये किया, उसको अटेंशन में मुझे शाम को सारी बातें बाबा को बतानी है, एक एक बात बाबा को बतानी है, अच्छा भी किया बुरा भी किया, जो गलती की वो भी बाबा को बतानी है, तो उसका उसको परमात्मा की याद रहेगी। नहीं, ये चार नियम है, परमात्मा की याद मेरे अंदर टिकी रहे। परमात्मा कौन, शिव बाबा कौन, मेरा बाबा कौन, ज्ञान का सागर, मतलब एबीसीडी का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तियों का सागर। परमात्मा शब्द ऐसे कुछ नहीं है, परमात्मा जब परमात्मा शब्द आए, बाबा शब्द आए, दिलाराम शब्द आए, बाप शब्द आए, तो ये सातों बातें ध्यान आनी चाहिए। मेरा बाप कौन है, ज्ञान का सागर, छोटा मोटा नहीं, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, रूहानी प्यार का सागर है, अतीन्द्रिय सुख का सागर है, आनंद का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है, परखने की शक्ति का सागर है, निर्णय करने की शक्ति का सागर है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति का, विस्तार को सार में लाने की बात का क्या मतलब है, इसका मतलब पहाड़ जैसी बात को भी रुई राई बना देना, राई को भी रुई बना देने वाला, ऐसी शक्ति है, उसका सागर है वो, और समेटने की शक्ति का सागर है, सहन करने की शक्ति का सागर है, सामना करने की शक्ति का सागर है, समाने की शक्ति का सागर है, सहयोग करने की शक्ति का सागर है, ऐसा बाबा है मेरा, मेरा बाबा, मेरा बाबा कहा तो मतलब सातों चीजें मेरे अंदर आ गई ना, मेरा माना मेरा, उसका जो कुछ है वो मेरा, मेरा बाबा, बाबा सात गुणों का सागर है, तो जब मेरा कहा तो सातों गुण सातों मेरे, सातों चीजें मेरी हो गई, तो कब होगा वो, इसके चार नियम है इसके, अमृत वेला पावरफुल, सोने वाला अमृत वेला नहीं है ना, अलर्ट एक्यूरेट जागती ज्योत है ना, निरंतर 45 मिनट बाप की गोद की अनुभूति होती रहे, मैं बाप की गोद में हूं, बाप से रूहानिहान चल रही है, परम धाम में गए, विक्रम विनाश करके आए, मुरली बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुन रहे हैं, ऐसे नहीं सुन रहे कुर्सी पे सोफे बैठ के मुरली नहीं सुन रहे, बाबा की गोद में, भले यहां कोई भी सुनाए, दादी सुना रहे हैं, कोई भी सुना रहा है, बाबा की मुरली है, वो सिर्फ सुनाने वाले हैं, मुरली किसकी है, महावाक्य किसके हैं, उसके हैं, परमात्मा के, मेरे प्रेमी के, मेरे साजन के हैं, ये फीलिंग से हमें मुरली सुननी चाहिए, तब अंदर रिकॉर्ड होगी, फिर मुरली जो लिख ली ना आपने, लिख के फिर जेब में डाल लो, दिल के पास, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, जितने भी दिल वाले हैं ना मुरली जेब में रखते हैं, इसलिए उनको एक बार हार्ट अटैक आया था 8 साल पहले, उसके बाद कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता उनको, हार्ट के डॉक्टर, किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, किसी डॉक्टर का चेहरा नहीं देखना पड़ता, जो सच्चे दिल से करते हैं, क्योंकि वो सब डॉक्टरों का डॉक्टर है, सब सर्जन का सर्जन है वो, उससे बड़ा कोई सर्जन दुनिया में है नहीं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने सर्जन, सब उसको याद करते हैं, दवाई देने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले। तो ऐसा 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 बाबा हमारा है। तो ये अमृतवेला, मुरली, फिर सारा 21 बार कम से कम रिवाइज करो, और फिर सोने के पहले अपना पोता मेल चार्ट भर के बाबा की गोद में सोने का। ये जो हमारा बेड है ना, जिस बेड पे हम सोते हैं, ये बॉडी क्या है? कार है ना। कार को कहां रखते हैं? गैरेज में रखते हैं, नहीं रखते? और गैरेज में सो भी जाते हैं क्या? ये हमारी बॉडी हमारा गैरेज है। तो हमारा जो बेड है ना, वो गैरेज है। बेड पे बैठे, बॉडी को वहां पार्क किया, और हमारा बेडरूम कहां है? सूक्ष्म वतन। मन बुद्धि से वहां गए, सूक्ष्म वतन में गए, और फिर हमारा बेडरूम कौन सा? हमारा बेडरूम तो सूक्ष्म वतन है, बेड कौन सा है हमारा? बाबा की गोद है ना। फिर बाबा की गोद में सो गए। सोने के पहले बाबा को बोल दिया, बाबा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी मेरे को स्कूल जल्दी जाना है, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, इतने बजे उठा देना, ऐसे बाबा को बोला, बाबा साढ़े तीन उठा देना। एक्यूरेट 3:30 बजेंगे नहीं, 3:29 बाबा उठा देगा, एक्यूरेट उठाएगा, और सुस्ती भी नहीं आएगी, फिर नींद भी बहुत अच्छी गहरी आएगी, सपने भी नहीं आएंगे। तो ऐसी बढ़िया नींद बाबा की गोद में आती है, बेचैनी नहीं होती, करवटें नहीं बदलते रहते, है ना। ये चार नियम है जो परमात्मा की याद बनी रहे। ये जब चार नियम पूरे फॉलो करते हैं, तब हमको परमात्मा की याद बनी रहती है, उससे फिर अपने को आत्मा समझ पाते हैं, उससे फिर सोल कॉन्शियस स्थिति आती है, जिसको हम कहते हैं देहीमन स्थिति, विदेही स्थिति जिसे कहते हैं ना। और उस विदेही स्थिति में रहने से फिर शांति, प्यार और खुशी की अनुभूति होती है, पवित्रता जीवन में उतर आती है। और फिर चार मर्यादाएं भी हैं, चार हमारी परहेज हैं हमारी। वो चार परहेज जब पक्के करते हैं ना, जैसे चार गोलियां हैं, ये तो अमृतवेला, मुरली, अटेंशन सारा दिन, और सोने के पहले अपना पोता मेल देना, चार्ट भरना, लेटर लिखना और चार्ट भरना बाबा को, और चार परहेज हैं। ये चार गोली हो गई, चार परहेज। ये चार परहेज कौन से हैं? अगर वो परहेज तोड़ा तो दवाई काम नहीं करेगी, ये गोली काम नहीं करेगी। पहला परहेज है पवित्रता। अगर मेरे अंदर पवित्रता है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक, तो ही मेरा अमृतवेला योग लगेगा। मतलब पहले तो ब्रह्मचर्य नियम का पक्का पालन होना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसके बोल भी, हमारे बोल भी ऐसे हो जिसमें कोई भी मिक्सिंग ना हो अपवित्रता की, है मन में विचार भी ना चले अपवित्रता के। खाली पवित्रता की जब बात कर रहे हैं, खाली काम विकार की बात नहीं कर रहे हैं, पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम विकार तो छोड़ना ही है, वो तो है ही मां शत्रु, किंतु क्रोध भी अपवित्रता है, लोभ भी अपवित्रता है, मोह भी अपवित्रता है, और अहंकार भी अपवित्रता है। इनका मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तक भी जरा टच ना हमको करे। और व्यर्थ संकल्प के बाद हमारे कर्मों में तो नहीं, बोल में भी नहीं, मन में भी नहीं, और संबंध संपर्क में भी नहीं, जब इसमें नहीं तो स्वप्न में भी नहीं होगा। और फिर व्यर्थ संकल्प चलना भी अपवित्रता है। लेटेस्ट डेफिनेशन जो बाबा की है वो है, व्यर्थ संकल्प चलना भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प माना क्या? ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला। अरे ड्रामा, ये ड्रामा बना हुआ है, परमात्मा इसका डायरेक्टर है, आप इसमें क्वेश्चन उठाने वाले कौन? हम तो एक्टर है ना, परमात्मा डायरेक्टर है, वो बोलने वाला करने वाला भी तो एक्टर है ना, वो भी तो कर्म सिद्धांत के अनुसार बोल रहा है, कर्म कर रहा है जो, उस पर मैं क्वेश्चन कैसे उठाऊं, प्रश्न कैसे उठाऊं, ये भी तो पवित्रता है। तो जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी, उतना मेरा अमृतवेला पावरफुल होता जाएगा। पवित्रता के ऊपर आधारित है हमारा योग। मान लीजिए मेरा बल्ब मेरा 15 डिग्री का है, 15 वाट का है, तो पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन है तो भी 15 वाट की करंट आएगी ना, या 100 वाट की आ जाएगी, कितनी आएगी बताओ, 15 वाट या 100 वाट? 15 वाट ही आएगी। 40 वाट होगा तो 40 वाट की आएगी, 60 होगी तो 60 का, 100 होगा तो 100 की आएगी। तो जितना जितना हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और सोपन तक भी, तो उतना ही हमारे अंदर क्या आता जाएगा, बाबा से उतनी लाइट आती जाएगी। लाइट माना क्या? लाइट माना ज्ञान आता जाएगा, उतनी पवित्रता आती जाएगी, उतनी शांति आती जाएगी, उतना रूहानी प्रेम पैदा होता जाएगा, उतना अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती रहेगी, उतना आनंद की अनुभूति होती रहेगी, उतनी शक्तियां आती जाएंगी, उतना अधिक हम सहन कर सकेंगे, उतना अधिक सिचुएशन को सामना कर सकेंगे, उतना ही पहाड़ जैसी बात को रुई बना सकेंगे, राई बना सकेंगे। अभी तो राई को पहाड़ बना देते हैं ना, छोटी सी बात होती है घर में, बोलते ही रहेंगे 20 साल पुरानी बात को भी बोलते रहेंगे, तुमने ऐसा किया था, तुमने मेरे को ऐसा बोला था, तुमने मेरे को ऐसे किया, तुम्हारी माँ ने मेरे को ऐसे किया, तुम्हारे बाप ने मुझको ऐसा किया, तुम्हारी बहन ने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा धोखा दिया, बात निकल गई, सांप निकल गया, लकीर को पीट रहे हैं। नहीं करते ऐसे, राई को पहाड़ बनाते हैं, फिर पहाड़ को राई बनाने की शक्ति आ जाएगी। तो इस पवित्रता के ऊपर आधारित है। इवन टेलीविजन देखना, अखबार पढ़ना है ना, ये भी अपवित्रता है। दुनिया की न्यूज हमें क्या चाहिए, क्या देखना है? कल की मुरली सुनिए, धूल छाई दुनिया ना, आज है कल नहीं है, सब धूल छाई हो जाएगी। क्या खबर पड़े इस दुनिया की, क्या सोचें इस बारे में, क्या देखें इस दुनिया के बारे में, है देखने की चीज कुछ? अच्छी अच्छी बातें, ऐसी अच्छी खबर आती है क्या? कोई अच्छी खबर आती है क्या? सब अच्छा, सब बेकार खबरें होती हैं, नेगेटिव होती हैं सारी। तो ये जो है, ये पवित्रता की गहराई में जितना जाएंगे उतना ही हमारा योग की गहराई, अमृत वेले में ज्यादा अच्छा योग लगेगा। सेकंड, या ऐसे करेंगे संकल्प, बाबा की गोद में पहुंच जाएंगे। बाबा कितने दूर है हमसे? अच्छा, परमधाम कितने दूर है हमसे? अच्छा, जो लोग बॉम्बे रहते, बॉम्बे यहां से कितनी दूर है बताओ? यहां से बॉम्बे कितनी दूर है? दिल्ली कितनी दूर है? बताओ, दिल्ली कितनी दूर है यहां से? जो आप जहां दिल्ली के घर में रहते हो, आपका घर कितनी दूर है यहां से? कितनी दूर है? अभी आप मन में सोचो, मैं अपने बेडरूम में पहुंचा, पहुंच गए नहीं पहुंच गए? कितनी देर लगी? एक सोच में पहुंच गए नहीं पहुंच, सोचा और पहुंचे ना, मन बुद्धि से पहुंच जाते नहीं पहुंच जाते? तो जैसे सोचते हैं वैसे ही पहुंच जाते हैं ना। तो ऐसे ही हमारा परम धाम सूक्ष्म कितनी दूर है? एक सोच की दूरी पर है। कितनी दूर है? सिर्फ एक सोच की दूरी पर। मेरा बाबा पहुंच गए बाबा की गोद। परम धाम कितने दूर है? सिर्फ एक सोच की दूरी पर। सोचा और पहुंचे, है ना? नहीं ऐसे? बताओ बहने, बताओ कितने दूर है? कि तो इतना विचार मेरा शुद्ध होना चाहिए, इतनी पवित्रता जब मेरे अंदर बढ़ जाएगी ना, पवित्रता की गहराई आ जाएगी, तो क्या होगा? सोचा और पहुंचे। अपवित्र संकल्प बीच में चलते हैं ना, नहीं ये तो मेरा है, इसके बगैर तो मैं रह नहीं सकता, इसके बगैर तो मैं रह नहीं सकती, ये तो चाहिए ही मुझे, है ना, वो सीरियल तो देखना ही है ना, नहीं संकल्प चल रहे हैं, उसमें क्या हुआ होगा, उसको क्या हुआ होगा, बच्चे ने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, संकल्प चल रहे हैं। ये अशुद्धता है। अशुद्धता है। संसार को मैं नहीं चला रहा हूं, आप नहीं चला रहे हैं, आप ही चल रहे हैं, वो परमात्मा चला रहा है। जब ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन कैसे चलेगी, जरा मैं धक्का लगाऊं डब्बे को तो चलेगी, अरे ड्राइवर चला रहा है ना, ड्राइवर चल, तुम क्यों चिंता, तुम आराम से बैठो, रिलैक्स सो जाओ ना, नहीं? तो ये जब हम, ये पवित्रता, इतनी पवित्रता की डिग्री चाहिए, तब हमारे शुद्ध संकल्प होंगे तो एक सेकंड में बाबा के पास पहुंचेंगे। ये इतना सर्च लाइट आ जाएगी, 15 वाट 20 वाट नहीं, सर्च लाइट। बाप समान चेहरा हो जाएगा, बाप समान चलन हो जाएगी। चेहरा चेहरा माना मन, हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति, भावना और संकल्प में क्या भर जाएगा? बाबा, बाबा जैसे हो जाएंगे। स्मृति बेहद की हो जाएगी, एबीसीडी भर जाएगा स्मृति में, कुछ और होगा ही नहीं एबीसीडी के अलावा। आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा। कनेक्शन माना हर संबंध, हर संबंध की अनुभूति अपने आप बाबा से उतरेगी। डी फॉर ड्रामा, ड्रामा माना हम सब आत्मा, इस सारे ड्रामा है, नाटक है, इसमें हम सब आत्मा एक्टर्स हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं और मेरा बाबा इसका डायरेक्टर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला बहुत अच्छा। कोई मेरी पत्नी क्यों बनी, कोई मेरा पति क्यों बना, मेरा बच्चा क्यों बना, क्यों बना? क्योंकि पिछले जन्मों का हिसाब किताब है उसके साथ लेने देने का, वो मुझे देना ही पड़ेगा, रो के दूं चाहे हंस के दूं। दुख दिया हुआ दुख लेना ही पड़ेगा, सुख दिया हुआ सुख लेना ही पड़ेगा, छूट के नहीं जा सकते। मैं बाबा को बोलूं, बाबा इसको सुधार दो ना, ठीक कर दो ना, ये रोज मुझे तंग करता है या मुझे तंग करती है, तो बाबा कहेगा सुधार देगा क्या उसको, या उसको बोलेगा इसको नहीं, इसको तंग नहीं करो? बाबा कहेगा अच्छा से, अच्छे से करो, ब्याज भी लगा लो, ब्याज लगा के तंग करो। क्योंकि बाबा को सब हिसाब किताब चुपतू करा के वापस ले जाना है, हिसाब किताब साथ में साथ लगा के नहीं ले जाना है। हाँ, अगर मैं बाबा को सच्चे दिल से याद करता हूं तो बाबा मुझे सहन शक्ति दे देगा, परखने की शक्ति दे देगा, पहाड़ जैसी बात को राई बनाने की शक्ति दे देगा, तो मेरे को फील ही नहीं होगी, नहीं ऐसे? तो ये बाबा मुझे शक्ति दे देता है। तो ये है ज्ञान की गहराई, ये समझ अंदर ना, ये समझ अंदर आएगी, तो ये पवित्रता गहराई आने से फिर हमारा योग लगेगा, फिर मुरली अंदर बैठेगी, फिर बार बार याद आएगी, मुरली बजते रहेंगे अंदर, मुरली सारा दिन अंदर बजेगी, अपने आप याद रहेगी। बार बार जैसे जुगाली करते ना, अपने आप उभर उभर के मन में आएगी बात, बाबा ने आज ये कहा था, बाबा ने आज ये कहा था, बाबा ने तो ऐसे कहा था आज, बाबा ने तो आज मुझे ऐसे कहा था, ये डायरेक्शन बाबा की थी। कोई गलत काम करने से पहले एकदम याद आ जाएगी, बाबा ने तो ये कहा था, मैं तो नहीं करूंगा ये बात, मैं तो नहीं करूंगी ये बात, नहीं ऐसे होगा? तो इस तरह से जब हम बार बार करते हैं, अभ्यास करते 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 ये स्थिति आएगी। तो पवित्रता के बाद दूसरा जो प्रेज है वो शुद्ध अन्न का है। शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न का मतलब है परमात्मा की याद में भोजन बनाना और परमात्मा की याद में भोजन खाना। बातें करते हुए नहीं, बातें करते हुए खाना नहीं बनाना, एकदम बाबा के लिए भोजन बना रही हूं, बना रहा हूं, किसी देहधारी के लिए नहीं बना रहा हूं। भोजन बना के बाबा को पहले भोग लगाओ, फिर उसके बाद उसी की याद में खाओ। जो आप तो सभी युगल हैं, याद होगा जब शादी हुई होगी पहले पहले तो क्या किया होगा, पहले 4-5 दिन क्या करते हैं? पति पत्नी को खाना खिलाता है और पत्नी पति को खाना खिलाती है, नहीं नहीं करते ऐसे, ऐसे नहीं किया कोई बात, चलो ऐसे नहीं, कोई हट जाने है ना। पर प्रेमी प्रेमिका ऐसे करते हैं, हमारा साजन है ना, हम उसकी सजनियां हैं, वो हमारा माशूक है, हम उसके आशिक हैं ना, तो अपनी थाली लेके सूक्ष्मता में चले जाओ, आप बाबा को खिलाओ, बाबा आपको खिलाए, इस तरह से भोजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? थोड़ा समय बाकी है, फिर तो समय, ये समय भी पूरा हो जाएगा, कोई नहीं खिलाएगा आगे, सत्युग में भी कोई खिलाएगा नहीं ऐसे, ठीक है? त्रेता और कलयुग में भी सत्युग कोई नहीं खिलाएगा, सिर्फ बाबा भी करता है, खाली है। अब सूक्ष्मतन में जाते हैं, भीड़ लगी होती है सूक्ष्मतन में, हम सूक्ष्मतन में रोज जाते हैं, अमृत वेले जाते हैं, तो वहां भीड़ होती है क्या? बाबा के पास जाते हैं, बाबा कहता है अभी लाइन में लग जाओ, पहले इनसे मिल लूं फिर तुमसे मिलूंगा, नहीं, बाबा खाली बैठा होता है, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ, मेरी गोद में आ जाओ, नहीं ऐसे करता बाबा, लाइन में लगा देता है। तो ऐसा हमारा बाबा भी हमारे लिए खाली बैठा, हमेशा खाली बैठा रहता है, मेरा बच्चा आएगा, थाली लेके आएगा, फिर मैं उसको खिलाऊंगा, वो मुझे खिलाएगा, है ना, इस भावना से खाना था। वो सात्विक भोजन स्वीकार करो, सिर्फ सात्विक भोजन। सात्विक माना जो भोजन सातों गुणों को बढ़ा दे, ज्ञान को बढ़ाने वाला, पवित्रता को बढ़ाने वाला, शांति को बढ़ाने वाला, रूहानी प्यार को बढ़ाने वाला, अतिंद्रिय सुख को बढ़ाने वाला, आनंद को बढ़ाने वाला, शक्तियों को बढ़ाने वाला, बेचैनी पैदा करने वाला भोजन नहीं। जैसे फल है, सब्जियां हैं, अंकुरित है, मूंग मेथी खाते हैं ना, अंकुरित मूंग मेथी है, दलिया है, रोटी सब्जी है, सिंपल, टेस्ट नहीं, सिंपल, दूध है थोड़ा सा, थोड़ा सा चबा चबा के खाना, प्यार से खाना, और आसक्ति से नहीं, स्वाद के वश होके नहीं। स्वाद के वश भोजन खाना यह भी पाप है। आज अच्छा भोजन बना, ज्यादा खा लिया, आज थोड़ा सा कम अच्छा बना, कम खाया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी, भोजन का निरादर करना, यह भी शुद्धन नहीं है। रात्रि भोजन में ना पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयां, है ना, चाउमीन, ये सब जो जो इसमें तेल ज्यादा है, मैदा की चीज बनी हुई है, वो रात्रि का आलस और अलबेलापन पैदा करता है। तामसिक माना नॉनवेज तो खैर हम खाते ही नहीं, लहसुन प्याज भी तामसिक है ना, वो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है, इंद्रिय को जागृत करेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जागृत करेगा, बेचैनी पैदा करेगा। बासी भोजन खाना, ये डब्बों में बंद आता है इनको खाना, है ना, फास्ट फूड होते हैं ना आजकल, फास्ट फूड बने हुए आते हैं, पैक आते हैं, डाला और तुरंत बन गया, ये सब तामसिक भोजन कैटेगरी में आते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं। तो जितना शुद्धन खाओगे उतना हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा, उतना हमारी मुरली पावरफुल होगी, उतना हमारा सारा दिन अटेंशन ज्यादा अच्छी होगी, उतना सच्ची दिल से बाबा को हम लेटर लिख सकेंगे कि बाबा ये पोता में सच्चाई से देते, नहीं तो पोता में समझ नहीं आता मैं क्या लिखूं, लेटर लिखने बैठते तो समझ नहीं आता क्या लिखूं, मैं तो बहुत अच्छा किया, गलतियां की याद ही नहीं आती। फिर सत्संग, सत्संग माना एक बाबा और एक मुरली, सत्संग माना सत्य का संग, एक तो बाबा सत्य है और एक मुरली उसकी सदा सत्य है, बस सारा दिन बाबा 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 बाबा, बस सारा दिन एक ही लगन धुन अंदर बजती रहे, बाबा बाबा बाबा, बस मुख से नहीं बोलना है, अंदर बजती रहे, अनहद नाद, अनलिमिटेड साउंड, यही बजता रहे, बस क्यों, बाबा ही सब कुछ है, बाबा मेरा बाबा सब 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 मर्जों की दवा है, सब बीमारियों की दवा है, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे दमे की बीमारी हो, चाहे सिरदर्द हो रहा हो। सिरदर्द क्यों होता है, जब ईगो होती है तो सिरदर्द होता है, ज्ञान चाहिए सिर को, ज्ञान आ गया ना, मैं एबीसीडी आ गया ना, सिरदर्द खत्म हो जाएगा, वो ज्ञान का सागर कौन, शिव बाबा। तो बाबा कहा तो आया ना शिव बाबा अंदर, तो सिरदर्द खत्म हो गया। दमे की बीमारी क्यों हुई, दमे की बीमारी हुई क्योंकि जीवन में चिंता है, अशांति है, डर है ना। बीमारी शब्द कहां से आया पता है आपको, बी माना डर, मारी माना बने रहना, डर बने रहना, इसको कहते बीमारी। फेफड़ों को चाहिए शांति, शांति का सागर कौन, शिव बाबा। तो जब मेरा बाबा का शांति अंदर आ गई ना, फेफड़े की बीमारी खत्म हो गई, दमा खत्म हो गई। दिल को चाहिए प्यार, सच्चा प्यार, रूहानी प्यार चाहिए। तो जब कहा मेरा बाबा प्यार से, तो रूहानी प्यार दिल में आ गए, ब्लॉकेज खुल गई हार्ट की, सुना, तो हार्ट की बीमारी खत्म हो गई। तो मेरा बाबा हर बीमारी की दवाई, आपको एसिडिटी बनती है, लीवर काम नहीं करता, आंतों में कब्जी रहती है, गैस बनती रहती है, थोड़ी थोड़ी बात फील होती रहती है, उस उन लोगों को ज्यादा कब्जी, ज्यादा पेट खराब होता है, गैस ज्यादा बनती है, जो सेंसिटिव होते हैं ना, भावुक होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो उनको ज्यादा पेट में गैस बनती है, भारीपन रहता है, पेट साफ ठीक से नहीं होता है। तो वो जो है मेरा बाबा कौन है, खुशी, पेट को चाहिए खुशी, तो खुशी कैसे आएगी, मेरा बाबा खुशी का सागर है, तो पेट की बीमारी ठीक हो गई, पेट का हाजमा ठीक हो जाएगा। थायराइड की बीमारी है, क्यों आ गई, आनंद नहीं है जीवन में, आनंद चाहिए, आनंद कहां से आएगा, मेरा बाबा आनंद का सागर है, आनंद आया, थायराइड ठीक होनी शुरू हो जाएगी, डायबिटीज ठीक होनी शुरू हो जाएगी, है ना, घुटने खराब हो गए हैं, कमर खराब हो गई है, गर्दन दर्द करती है, इनका मतलब इनको के लिए क्या चाहिए, शक्तियां चाहिए, गर्दन को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, घुटने को समेटने की शक्ति चाहिए, कमर को विस्तार को सार मिलाने की शक्ति चाहिए, कहां से आएगी, मेरा बाबा कहा वो शक्तियां आ गई, कमर ठीक हो गई, घुटने ठीक हो गए, गर्दन ठीक हो गई। तो जितना अधिक बाबा को हम बहुत प्यार से याद करते हैं और अपने उस अंगों पर प्रयोग करते हैं, बीमारी भाग जाती है। दवाई लेते रहो किंतु दवाई के साथ ये भी करो तो बहुत जल्दी बीमारी भागती है। तो शुदन सत्संग मैंने बताया, तो बाबा, सिर्फ एक बाप का संग सत्य का संग, और एक बाबा की मुरली सत्य है, मुरली में कुछ भी झूठ नहीं है, एक मुरली का संग, ये दो है सच्चे संग, सारा दिन बाबा और बाबा की मुरली, और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कहते हैं एबीसीडी, ज्ञान माना एबीसीडी, मुरली माना भी एबीसीडी, मुरली में एबीसीडी होती है, बाबा भिन्न भिन्न रूप से डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट एंगल से, ताकि बच्चों को समझ आ जाए बाबा ऐसे मुरली सुनाता है। तो मुरली में एबीसीडी है ना, तो एबीसीडी के अलावा ई नहीं करो, ई माना एक्स्ट्रा, एबीसीडी बाबा की श्रीमत है, ई माना एक्स्ट्रा मनमत, एक्स्ट्रा जो मतलब ब्रह्मा बाबा ने किया हमें वही करना है, फॉलो फादर करना है, सी फादर करना है, इसने क्या किया उसने क्या किया वो नहीं, वो क्या करता है, स्वामी जी क्या कहते हैं, वो टेलीविजन में टॉक आई थी उसने क्या बोला, अखबार में क्या दिया हुआ है, मैगजीन में क्या दिया, हम भी ये भी ट्राई कर लें, थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, थोड़ा सा मुद्रा लगा के बैठ जाएं। अरे भाई जब मुद्रा है तो मुद्रा लगा के, तब अंत में जब विनाश होगा तो मुद्रा लगा के योग करोगे क्या, खाना बनाते समय मुद्रा लगा के खाना बनाओगे क्या, गाड़ी चलाओगे तो मुद्रा लगा के गाड़ी चलाओगे क्या, बताओ, नहीं, अंदर का चिंतन है ये, किसी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, लंबा सांस खींचने की आवश्यकता नहीं है, प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आसन लगा के बैठने की आवश्यकता नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते, स्नान करते भी, ब्रश करते, शेव बनाते, हर कर्म करते बाबा की याद में रहना है। एबीसीडी को जितना अधिक रिवाइज करते हैं और जितना अधिक रियलाइज करते हैं, अर्थात अपने जीवन में लाते हैं, अनुभव करते हैं, उतना ही अधिक हमें बाबा के साथ हमारा कनेक्शन संबंध की अनुभूति होती है, उतना अधिक हम ड्रामा को साक्षी होकर देख सकते हैं, नहीं ऐसा। और चौथी बात है दैवी गुणों में व्यवहार, चौथा परहेज है, मतलब दैवी गुणों में हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारा व्यवहार 100% दैवी गुणों का होना चाहिए, अर्थात सत्यता का व्यवहार करो, अर्थात जैसे मैं दूसरे रूप में कहूं तो एक बार क्रोध कर लिया ना आपने, ये दैवी गुण नहीं आसुरी गुण है क्रोध करना, एक बार क्रोध कर लिया 3 दिन तक आपको आपकी वो स्थिति बनेगी नहीं, सिर्फ 3 दिन तक मुरली सुनते रहोगे, अमृत वेला करते रहोगे, वो योग लगेगा नहीं 3 दिन तक, जो लगा था आज लगा था सुबह लगा था 3 दिन तक नहीं लगेगा। एक बार आपने जल्दी कर लिया 18 घंटे तक वो स्थिति बनेगी नहीं, एक बार आपने उदास हो गए ना मूड ऑफ कर लिया 5 दिन तक आपकी स्थिति नहीं बनेगी। और काम विकार को टच भी कर लिया तो फिर तो गए, कामना इच्छा भी ला ली ना मन में, इच्छा भी आ गई ना तो गए। तो ये जो है अपने आप को बहुत गहराई से देखना कि जो बाबा ने जो 5 विकार कहे ना, ये 5 विकार ही हमें शांत बनाते हैं, 5 विकारों के 10 बच्चे हैं वो भी हमको शांत बनाते हैं, उनको टच भी नहीं करना है, सिर्फ दैवी गुणों में व्यवहार करना है। सत्यता, सत्यता माना अपने ओरिजिनल अनादि आदि पावन सत्व प्रधान स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना, संकल्प बोल और कर्म करना, किसी भी बुराई व अवगुण को संकल्प बोल से भी टच ना करना, ये हमारी सत्यता है, ये ट्रूथफुलनेस है हमारी कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरे सरसंबंध किसके साथ है, दी संसार एक नाटक है, इस सत्यता को हमेशा इसमें चलना, पवित्रता। निर्भयता। निर्भयता का मतलब मेरी एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। हमेशा बुद्धि शांति धाम और सुख धाम में लगी रहे, वो निर्भय है, उसको कोई डर नहीं है। एक सोचा सुख धाम शांति धाम में चला गया, दूसरी सोच में परम धाम में चला, सुख धाम में चला गया, डर ही नहीं है मरने का। तो इस तरह से बहुत गहराई से अपने आप को अंतर्मुखता, अंतर्मुखता माना क्या, अंतर्मुखता एक सेकंड में देह से डिटैच, मैं शरीर ही आत्मा हूं, अंतर्मुखी रहना, बाह्यमुखी नहीं, अंतर्मुखी, अंदर खोए रहो, मैं तो एक अशरीर ही आत्मा हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, मैं शरीर को चला रहा हूं, शरीर को चलाने वाला मैं हूं, मैं आत्मा यहां बैठी हूं, सांस लाइट जा रही है बॉडी में, इससे शरीर काम कर रहा है। एकांतवासी, एक के अंत में खोए रहो, एक के अंत, एक एक कौन है, शिव बाबा, शिव बाबा कौन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान के सागर के अंत में खो जाओ, खोए रहो, पवित्रता के सागर के अंत में खोए रहो, शांति के सागर के अंत में खोए रहो, रूहानी प्यार के सागर के अंत में खो जाओ, खोए रहो, कुछ देर खोए रहो, अकेले बैठे हो खोए रहो, घंटों भी बैठे रहो, कोई किसी की कोई परवाह नहीं कि मोबाइल करूं उसको पूछूं तुम्हारा क्या हाल है, कोई मोबाइल की इच्छा नहीं। ये मोबाइल भी पवित्रता है, पता है आपको, अभी सबसे बड़ी पवित्रता आज कौन सी हो गई है, मोबाइल है ना। तो अत्यंत सुख के सागर में खो जाओ, आनंद के सागर में खो जाओ, सब शक्तियों के सागर में खो जाओ, और फिर एकाग्रता, फिर उसी में एकाग्र हो जाओ, एक नामी व्यर्थ से इकोनॉमी, एक रस स्थिति, सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना, सबको सम्मान दो, अपने सम्मान में रहो, मैं कौन हूं, और कोई कैसा भी है सब अच्छे है ना, सबके अपने 63 जन्मों के पाप कर्म, अपने अपने पाप कर्म काट रहे हैं, रिटर्न जर्नी पे कोई किसी स्टेज में गुजर रहा है, कोई किसी स्टेज में गुजर रहा है, तो मैं किसी को क्यों देखूं, स्वचिंतन स्वदर्शन में रहूं, परचिंतन प्रदर्शन क्यों करूं, स्वचिंतन स्वदर्शन, स्व माने आत्मा, मैं आत्मा के दर्शन में रहूं ना, पूरे पांचों युगों में मैंने क्या क्या किया, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, अनादि स्वरूप, ये पांच स्वरूप, बार बार आत्मा का दर्शन, स्वदर्शन माना क्या, आत्मा का दर्शन, आत्मा का पांचों युगों में दर्शन क्या हुआ, इसका दर्शन करता रहूं, ये आत्मिक दर्शन मुझे होता रहे, ऐसी स्थिति मेरी बने। तो ये जब हम बार बार अभ्यास करते रहे, तो जितना ये अभ्यास करते हैं उतनी हमारी स्थिति पावरफुल होती जाती है। फिर निमित्त भाव, कोई भी काम हो, कई बार हम घरों में क्या करते हैं, डायरेक्टर, घर वाला जो मेन मेल होता है ना, जो मेन पति होता है या पत्नी, अपने को डायरेक्टर समझ लेते हैं कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे नीचे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग मेरा कहना माने, जैसे मैं को वैसे ही करें, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टर शिव बाबा है, हम सब आपस में एक्टर्स हैं, वो जो डायरेक्शन कर्म सिद्धांत के अनुसार उनको मिलेगी, वो वैसे ही काम करेंगे आपके साथ, आप डायरेक्टर मत समझो अपने आप, फिर आप दुखी नहीं होंगे, है ना। तो निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, फिर अपना सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, मीठा बोल, हमेशा मीठा बोल, कभी गंदा नहीं बोलो। तो जब हम ऐसा पुरुषार्थ करते जाएंगे, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी माना पवित्र भाव, सदा पवित्र भाव, निरंतर योगी भाव, वफादार माना मेरा है तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और ईमानदार माना तन मन धन तेरा, रोम रोम में बाबा बस जाए, एबीसीडी बस जाए, स्मृति वृत्ति भावना संकल्प में बाबा बस जाए, और एक एक सेकेंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प बाबा बाबामय हो जाए, ये है ईमानदारी। बाबा से बिना पूछे कोई संकल्प ना करें, बाबा से बिना पूछे कौड़ी खर्च ना करें, कोई काम करना हो, कोई नया काम करना हो, बाबा से पूछ के श्रीमत लेके कर्म करें, अमृत ले बाबा से श्रीमत मिल जाती है ना, नहीं तो अपनी टीचर बहन से, निमित्त बहन से पूछ लें, है ना, दादियों से पूछ लें, तो तब हमारी स्थिति अच्छी बनती है ना। और फिर फरमान बरदार, बाबा का फरमान क्या है, इस समय आखिरी समय है, देहे देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ को बुद्धि से भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ, मां में कम याद करो, तो विक्रम विनाश, विक्रम माना जो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो गए हैं, वो डिलीट हो जाएंगी मेमोरीज, और वो डिलीट हो जाएंगी तो फिर हमारे क्या होगा, तब हम पावन सत्व प्रधान बनेंगे, तब सातवें एनर्जी हमारे अंदर आएंगी और तब बाबा से हम मिलन बना सकेंगे। तो ये चार नियम और चार परहेज, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, सारा दिन 20-21 बार मुरली रिवाइज करो, सोने के लेटर लिखो बाबा को, पत्र लिखो, पत्र में सुबह से लेकर शाम तक क्या किया 100% उसमें बयान करो, और फिर चार्ट भरो, फिर बाबा की गोद में बाबा को याद करके सो जाओ। और चार परहेज, पवित्रता, शुदन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। जब ये आठ बातें हमारे जीवन में, जब चार बातें हम नियम तब हमारे जीवन में निभा सकेंगे जब हमारी चार परहेज पक्के होंगे। और जैसे जैसे ये चार नियम पक्के होते जाएंगे, चार परहेज पक्के होते जाएंगे, लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाएंगे, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे, तो क्या होगा, फिर हम सच्ची सीता बन सकेंगे, तब हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकेंगे, तब हम राजा रानी बन सकेंगे। यही है ज्ञान की गहराई और यही है योग की गहराई। ओम शांति। चलिए अभी हम 15-20 मिनट हमारे पास हैं, हम पावरफुल याद में बैठते हैं। मैं आपको संकल्प दूंगा, उस संकल्प में टिक करके हम बाबा को याद करते हैं, ठीक है? सभी सीधे होके बैठ जाएं, अलर्ट होके बैठ जाएं, सभी कमर सीधी करके बैठे, आंख खोल के बैठे सभी। हम सभी पहले यह अनुभव करेंगे कि मैं दोनों भ्रष्टियों के मध्य एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। महसूस करते रहें, मैं एक सितारा हूं दोनों भ्रुक्ति के मध्य, लगभग यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे चमक रहा हूं। मुझे आत्मा से 7 लाइट बॉडी में जा रही हैं, हर कोशिका में जा रही हैं। ज्ञान, ज्ञान माना ABCD, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, परम धाम में रहने वाले सर्व आत्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा शिव, जिनका रूप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, मैं उनकी संतान हूं। मेरे सरल संबंध शिव बाबा के साथ हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे मां की पालना और प्यार दे रहे हैं। जन्म से ही बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि की लिफ्ट की गिफ्ट दी है। जो एक सेकंड में मुझे सूक्ष्म वतन में बैठे बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। प्लीज दिव्य बुद्धि की लिफ्ट में बैठ जाओ, शुद्ध संकल्प का स्विच ऑन करो और बाप दादा की गोद में पहुंच जाओ। हम बाप दादा की गोद में पहुंच गए, मामा मेरा स्वागत कर रहे हैं, आओ बच्चे, मेरे सिकीला दे बच्चे, आओ मेरी गोद में समा जाओ। मेरे दिल तक नशीन बच्चे, आओ मेरे मस्तक मणि बच्चे, नैनों के नूर बच्चे, आओ मेरी गोद में समा जाओ। बाबा का हाथ अपने मस्तक पे महसूस करें, अपनी कमर पे महसूस करें, बाबा से सर्व शक्तियां मुझे आत्मा में उतर रही हैं और मेरे रोम रोम में जा रही हैं, ऐसा महसूस करें। शिव बाबा ने बाप के रूप में मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है, जिससे मैं आत्मा अपने को अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु के रूप में देख सकती हूँ। देखें, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने आप को देखें, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु मस्तक के मध्य में चमक रहा है, मैं आत्मा शिव बाबा को देख सकती हूँ ज्ञान के तीसरे नेत्र से, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु शिव बाबा भी, ब्रह्मा बाबा को देख सकती हूँ, सूक्ष्म वतन को देख सकती हूँ। सूक्ष्म वतन को देखें, सूक्ष्म वतन कैसा है, चारों तरफ सफेद प्रकाश, मैं आत्मा बाबा की गोद में, इनकी ज्ञान के तीसरे नेत्र से परमधाम को देख सकते हैं, परमधाम को देखें, चारों तरफ गोल्डन लाइट, बीच में सितारे चमक रहे हैं, शिव बाबा सबसे ब्राइट सितारा, सबसे माइटफुल सितारा, सब आत्माओं के बीच में चमक रहा है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही मैं आत्मा कर्मों की गुह्य गति को समझ सकती हूँ, हर कर्म का फल, जो भी मैंने कर्म किए हैं पिछले 63 जन्मों में, वो मेरे सामने आ रहे हैं। तो बाप की याद और बाप का साथ होने के नाते वो कर्म भोग, वो पेपर्स, वो परिस्थितियां सूली से कांटा बनकर और कांटे से भी फूल बनकर सामने से पास होते जा रहे हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से मैं आत्मा सुखधाम को भी देख रही हूं। जहां चारों तरफ हीरे जवाहरात के महल हैं, सारा सतयुग एक बाग एक गार्डन के समान है। जगह जगह नारों नारी राज कर रहे हैं, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, चारों तरफ सुख का माहौल है। शिव बाबा ने शिक्षक के रूप में मुझे इस सृष्टि के आदि मध्य का सब ज्ञान समझा दिया है, राज समझाया है। अर्थात में सतयुग में क्या थी, सतयुग में मैं देवी देवता था, प्रिंस प्रिंसेस थे, हीरे जवाहरों के महल में रहते थे, चारों तरफ सुख था, स्मृति थी, निरोगी काया थी, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मा थे, हर सिर पर लाइट का ताज था, रतन जड़ित ताज। देखें अपने आप को अनादि आदि स्वरूप में देखें। ये बाबा मुझे शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं। अपने मध्य पूज्य स्वरूप को देखें, मंदिरों में देवी देवता के रूप में, श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में, श्री कृष्ण राधे के रूप में भक्तों की लाइन लगी हुई है, पूजा अर्चना हो रही है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, ऐसा महसूस करें। स्थिति में मैं आत्मा देवी देवता के रूप में अखंड दानी, अखंड महादानी, अखंड वरदानी रूप में सब भक्त आत्माओं को उनकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे। वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप में बाबा ने मुझे शूद्र से ब्राह्मण बनाकर अपनी गोद में बिठा लिया है, बाप दादा ने, और अपनी गोद में बिठा के मुझे राजयोग सिखा रहे हैं। बता रहे हैं बच्चे, तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं, और सृष्टि एक नाटक है, इस नाटक में तुम एक एक्टर हो, मैं इसका डायरेक्टर हूं, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। मेरा मीठा बाबा मुझे राजयोग सिखाकर पावन सत्य प्रधान फरिश्ता बनाकर विश्व की सभी मनुष्य आत्माओं और प्रकृति के पांचों तत्व आकाश अग्नि वायु जल और पृथ्वी को पावन सत्व प्रधान बनाकर सभी आत्माओं को अपने साथ स्वीट साइलेंस होम में ले जा रहे हैं। बाबा ने मुझे फरिश्ता बना दिया है, पुरानी दुनिया से न्यारा, बाप की गोद का प्यारा, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप महसूस करें। मैं बाबा के साथ लाइट की बॉडी में, लाइट के शरीर में सारे विश्व की मंत्र सेवा कर रहा हूं, सूक्ष्म वतन में बैठ करके, कभी सूक्ष्म वतन में कभी परम धाम में, सारे विश्व को मुझ आत्मा से ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और सर्वशक्ति के वाइब्रेशंस जा रहे हैं। हर आत्मा इन वाइब्रेशंस को पाकर जागृत हो रही है। आत्माओं को हिम्मत की टांग मिल रही है, और वो आत्माएं बाबा के सेवा केंद्रों की तरफ जाने को उद्यत हुई हैं। बाबा के सेंटरों में जा रही हैं, ऐसा महसूस करें। उनके मन में जागृति आ रही है कि हम देह नहीं, हम आत्मा हैं। इस तरह से सुदर्शन मुझे बाबा ने टीचर के रूप में सुदर्शन चक्रधारी बना दिया। बाबा ने सतगुरु के रूप में मेरे विक्रम विनाश कराकर मुझे स्वराज्य अधिकारी बना दिया है, अर्थात आत्मा का राज्य, मुझे आत्मा का राज्य मन बुद्धि संस्कार पांचों कर्मेंद्रियों आठ अंगों पर हो गया। मैं आत्मा राजा हूं, मन बुद्धि संस्कार मेरे तीन मंत्री, पांचों कर्मेंद्रियों और आठ अंग मेरी दरबार में बैठे हैं। सतगुरु ने मुझे स्वराज्य अधिकारी बना दिया। ओम शांति। इस तरह से अपने अंदर एक संबंध की अनुभूति आप करते रहें, और जब इस तरह से अनुभूति करते रहेंगे तो हमारी स्थिति अपने आप ही सारा दिन चलते फिरते ऐसी रहेगी। ओम शांति।